ఓం శాంతి. రాజయోగ శిబిర మే కల్ ఆప్ సభీ నే రాజయోగ సే సంబంధిత బాతే సుని, పరంతు ఆజ్ కా జో విషయ హై జీవన్ కైసే జీనా హై. బహుత్ సుందర హమ్ సభీ నే గీత సునా, జిందగీ కా ఖేల్ హస్తే హస్తే ఖేలియే. और ये जिंदगी का खेल हंसते हंसते ही खेलना चाहते हैं हर कोई, परंतु परंतु कह देते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी आ जाती है जो हमें प्रिय नहीं लगती है, और उस कारण से आज मनुष्य जैसे हंसना ही भूल गया है, मुस्कुराना भूल गया है. घर में अगर मुस्कुरा भी देता है तो घर वाले ही सबसे पहले पूछना आरंभ करते हैं, क्या बात है. और अगर कह दिया कि बस ऐसे ही, तो कहेंगे दिमाग ठीक है. हाँ, मतलब ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हैं बिना कारण के. ये हाल हो गया है हमारा. जीवन में खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आज खुशी के लिए तरस गया है इंसान. खुशी हमारे जीवन से कोसों दूर चली गई है, और इसीलिए लाइफ की क्वालिटी क्या हो गई है. खुश रहने के लिए हमें त्योहार मनाना पड़ता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ता है, कहीं जाने की सोचते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी से थोड़े क्षण के लिए भी सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले जीवन के अंदर. खुशी का अनुभव न कर पाने का कारण कई लोग यही समझने लगते हैं कि शायद हमारा जीवन अनेक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है, इतना टेंशन हो गया है तो खुशी कहां से रहेगी. और उसके लिए फिर कभी कभी समय के ऊपर डाल देते हैं कि वर्तमान समय ही ऐसा है, हर एक के लिए यही समय है. समय क्या कहता है? वैसे समय के लिए दुनिया में बहुत कुछ कहा हुआ है. मनुष्य यही कहते हैं समय बड़ा बलवान है, क्या करें, समय के आगे हमारा जोर ही नहीं चलता है. वास्तव में समय हमसे क्या कहता है? समय प्रति समय हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करता है. जब भी जीवन में कोई परिस्थिति समस्याएं आती है तो वो समस्या हमसे क्या चाहती है? कि हमारा प्रतिउत्तर क्या रहेगा. ऐसे समय भी हमसे एक प्रतिउत्तर की मांग करती है कि पॉजिटिव प्रतिउत्तर दे रहे हैं या नेगेटिव प्रतिउत्तर दे रहे हैं. और तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज. समय क्या प्रतिउत्तर चाहता है? परिवर्तन. जितना तीव्र गति से परिवर्तन समय में हो रहा है। समय हमसे भी परिवर्तन का ही प्रत्युत्तर मांग रहा है। परंतु अगर समय के हिसाब से हमने परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय बड़ा बलवान है। समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की, समय की मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। और उसके बावजूद भी अगर परिवर्तन नहीं किया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है। वो काल तो क्या महाकाल का रूप भी ले लेता है। इसीलिए समय जो कह रहा है उसके संकेत को समझने की आवश्यकता है। आज मैनेजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गया टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन बिना समय को समझे कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए मनुष्य कभी कभी अफसोस करता है बाद में कि जब समय का पंछी उड़ जाता है फिर मनुष्य अफसोस करते, अरे ऐसे कर लिया होता था तो अच्छा होता था, ये कर लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब समय तो चला गया। इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है, इसीलिए परिवर्तन कुदरत का नियम है। परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। तब कहा कि समय हमसे परिवर्तन की मांग करता है। ये समय एक चक्र में चलता है और इसीलिए काल चक्र कहा उसको। समय के जितने भी चक्र है दुनिया में वो भी नित्य चलते हैं और एक चक्र में चलते हैं। दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र है, नित्य चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, नित्य चलता है। कुदरत की साइकिल को देखेंगे, पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समंदर में आ जाता है। ये चक्र भी नित्य चलता रहता है। तो कुदरत के जितने भी चक्र बने हैं सारे चक्र नित्य चलते हैं, कोई चक्र बंद नहीं होता है। कोई भी चक्र की न आदि है न अंत है, लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की भी चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह आती है। ऋतु के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म में भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहते हैं सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। कोई मनुष्य का काम नहीं उसको बदलना। कुदरत की रचना इस तरह से बनी हुई है, जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता ही नहीं चलता है। ठीक इसी तरह कुदरत की रचना में ही इस तरह से यह काल चक्र भी बना हुआ है कि घोर पापाचार की दुनिया कलयुग को भी परिवर्तन होना ही है, कोई चाहे या न चाहे। लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया में कुदरत हमसे क्या परिवर्तन चाहता है, क्योंकि परिवर्तन खाली समय का नहीं है, खाली काल का परिवर्तन नहीं है, युग का परिवर्तन है, मनुष्यों का परिवर्तन है, प्रकृति का परिवर्तन है, हर चीज का परिवर्तन। तो प्रकृति कुदरत हमसे क्या परिवर्तन चाह रही है? हर चक्र को अगर देखा जाए तो हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है। जिस तरह दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल, उसी के अंदर वो चक्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब 5000 साल कहते हैं तो मनुष्य के मन के अंदर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। 5000 कहां से आया, किसने कहा, क्या सबूत है, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का बताया, आप पूरा चक्र ही 5000 का कैसे कह सकते हैं। कितने सारे सवाल होते हैं। वैसे अगर मैं एक ही सवाल पूछूं कि लाखों साल का एक एक युग है उसका कोई सबूत है, क्या कहेंगे? फिर कैसे मान लिया कि लाखों साल का एक एक युग है बिना सबूत के? शास्त्रों में लिखा है इसीलिए। गीता में कहां लिखा है कि एक एक युग लाखों साल का है? ब्रह्मा का दिन और रात 5000 साल का है, पूरा चक्र 5000 साल का है। वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास, लाखों साल का कोई सबूत नहीं है। और बिना सबूत के कैसे स्वीकार कर लिया? वैसे देखा जाए तो सबूत किसी चीज का नहीं है। जिसने भी ये 24 घंटा का चक्र बनाया है ना, 24 घंटा का जिसने कैलकुलेशन किया, 60 सेकंड की 1 मिनट बनाई, 60 मिनट का 1 घंटा बनाया, और ऐसे ये दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। किसी ने पूछा कि किस बेसिस पर 24 घंटा बनाया? अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलता ही था। ये 60 फिगर किस बेसिस पर लाए? दिन और रात का चक्र तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो या 20 घंटे में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था। लेकिन कभी हमने प्रश्न पूछा कि भाई ये 24 ही क्यों, 60 ही क्यों, 50 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। सबूत मांगा हमने नहीं, स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को भी उसी अनुसार ढाल दिया, है कि नहीं। कई चीजों का सबूत मांगने पर भी नहीं मिलता है, स्वीकार ही करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ऋतुओं का चक्र देखो, एक साल का, साल के अंदर 365 दिन का ये चक्र ऋतुओं का किसने कहा, किसने कहा कि 365 दिन का एक चक्र है। विज्ञान ने कहा और हमने स्वीकार कर लिया कि भाई 365 दिन लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में, विज्ञान ने कहा, हमने मान लिया। और इस तरह से पूरा 12 मास का इंग्लिश कैलेंडर बन गया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं, क्या कहेंगे, 3 साल के बाद अगर अधिक मास, एक मास बढ़ जाता है पुरुषोत्तम मास, तो साल में कितने दिन है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हाँ, 3 साल के बाद अगर अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होते हैं, 354 दिन, 354 दिन होते हैं। अब हिंदू कैलेंडर भी जो बना है एक विज्ञान पर बना है, और उस जमाने का विज्ञान जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेशन के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। अगर भारत जीरो नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस कहां से विकसित होता था। आज भी पूर्णमासी और अमावस्या के समय पूरा समुद्र का पानी उछलता है और एक्यूरेट चलता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब कहते हैं कि भाई ये साल अधिक मास है इसलिए बरसात एक मास पीछे जाएगी, एक्यूरेट एक मास पीछे जाती है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, अकाल घोषित कर देंगे, बाद में खूब बारिश आती है, अधिक मास जो था। तो एक्यूरेट कौन सा है, हिंदू कैलेंडर, फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी, इंग्लिश कैलेंडर। और भारत वाले दोनों कैलेंडर लेके चल रहे हैं, दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर पर। फाड़ के फेंक तो नहीं दिया हमने कि भाई इंग्लिश कैलेंडर सही है, विज्ञान ने कहा इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, कहा क्या, नहीं। ये भी नहीं कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, दोनों कैलेंडर लेके चल रहे हैं। सबूत है कौन सा सही कौन सा गलत, नहीं, फिर भी दोनों को मान रहे हैं। सबूत न 24 घंटे कहां से आए मालूम है, 60 सेकंड किस बेसिस पर कैलकुलेट किया गया ये भी नहीं मालूम है, 365 सही है 354 सही ये भी मालूम नहीं है, और 5000 का सबूत चाहिए। अब बताओ, अगर 24 घंटे को स्वीकार कर सकते हैं, 365 354 को स्वीकार कर सकते हैं, तो 5000 को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास, क्या सबूत है, महाभारत के अंदर, महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हो गए, 5000 साल हो गए, और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या है, चलता है हा? तो हो गया 5000 साल। महाभारत के अंदर जो पात्र दर्शाए हैं, आज के समाज में ये पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? है? बहुत सारे हैं। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया था और आज समाज में कितने शकुनी हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। दुर्योधन जैसे पात्र देखने को मिलते नहीं मिलते? हाँ, दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे समाज में है या नहीं है? और उसके बावजूद माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी है या नहीं है? बच्चों को कुछ है ही नहीं सकते है कि नहीं है? तो महाभारत के सारे पात्र तो इस समय मौजूद है समाज के अंदर। तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, तो हो गया 5000 साल। इसी तरह इस्लाम धर्म में, कुरान में भी ये बात लिखी हुई है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आने वाला है। तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से उन्होंने भी ये बात कही है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नेस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। विश्व के भविष्य में ये बात उसने देखी है। तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर है ही 5000 साल का। तो इसलिए 5000 साल की बात हर धर्मशास्त्र में मिलेंगी, लाखों साल का एक एक युग किसी धर्मशास्त्र में नहीं कहा है। इसीलिए अगर दूसरी बातों को स्वीकार कर सकते बिना सबूत के, तो 5000 को क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि भाई ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, वो सही है कि गलत है? वो भी सही है। जिस तरह दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे 24 घंटे का चक्र कितनी बार घूम चुका है? 2015 साल 16 साल से हम गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात के चक्र तो चलते ही थे। हमने नहीं गिनती किया तो क्या हुआ? ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, उसमें पत्थर मिलेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? इसलिए वो भी सही है आर्कियोलॉजी वाले, और ये भी सही है कि 5000 साल का एक काल चक्र है। अब ये काल चक्र को दर्शाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है और लगभग हर धर्म में स्वास्तिका का निशान आपको जरूर मिलेगा। शुभ की निशानी मानी गई है। कोई उल्टा निकालते, कोई इस तरह से उल्टा निकालते हैं। स्वास्तिका का मतलब है सुअस्ति, संस्कृत के मूल से ये निकला है सुअस्ति। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात लिखी है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। तुम निश्चिंत रहो, तुम क्यों चिंता करते हो। यानी तीनों घड़ी अच्छी है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य पर सबसे पहले स्वास्तिका निकालते पंडित, कि ये घड़ी भी शुभ है, ये निश्चय रखो और ये शुभ कार्य को आरंभ करो, यानी श्री गणेश करो। भारत में इसीलिए जब भी शुभ कार्य होता है स्वास्तिका निकालते हैं, फिर उसके ऊपर एक कलश रखते हैं, फिर उसके ऊपर नारियल रखते हैं। कभी किसी पंडित से पूछो ये क्यों रखा जाता है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे ये आपके मतलब की बात नहीं है, पूजा आरंभ करो चलो। यही बात है, आज हम आपको उसका मतलब बताते हैं कि स्वास्तिका निकाला उसका मतलब है ये घड़ी भी शुभ है, सुअस्ति, और फिर उसके ऊपर कलश रखा। कलश यानी ये हमारे सर का आकार क्या है, कि ये बात कि ये घड़ी भी शुभ है, ज्ञान युक्त बुद्धि से उसको समझना है, बुद्धि का कलश है। इसीलिए इसका आकृति क्या है, कलश जैसी है। तो यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से इस बात को निश्चय करते हुए ये शुभ कर्म आरंभ करना है, और फिर उसको नारियल से ढक दिए। नारियल को कहते ही है श्रीफल, श्रीफल कहते हैं ना, कि जब ज्ञान युक्त बुद्धि से इस निश्चय के साथ हमने ये शुभ कर्म आरंभ किया तो उसका फल कैसे होगा, श्रीफल, श्रेष्ठ फल। श्री यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ फल ही मिलेगा। इसलिए बिना किसी संशय के श्री गणेश कीजिए, यह है इसका भाव। लेकिन कोई आपको ये बात समझाएंगे नहीं, और अगर पूछ भी लिया तो कहेंगे आपको क्या काम है, आप पूजा करिए ना, मुहूर्त निकल रहा है। अरे मुहूर्त हर घड़ी शुभ है, इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने जब ये बात कही कि हे अर्जुन तुम निश्चिंत रहो, कोई चिंता नहीं करो, हर घड़ी सदा शुभ है। लेकिन तब कई बार कई लोग क्या कहते, बहन जी कुछ कुछ घड़ियां ऐसी होती है जो बहुत अशुभ दिखाई देती है, बहुत बुरा होता है, उसको अच्छा कैसे माने। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे और उसका कार एक्सीडेंट हुआ तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में थे, हमें पता चला तो हमने सोचा मिल के आते हैं। जब मिलने गए काफी लोग थे वहां पर, अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जब ये बात कही तो उसको बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, भगवान में आस्था रखने वाले के मुख से ये बात निकल रही थी। बड़ा आश्चर्य लगा, हम चुप हो गए। लेकिन हमें महसूस होने लगा कि जितना देर यहां खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। बार बार एक ही बात कह रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों। अरे जान तो बच गई, खाली दो पैर फ्रैक्चर हुआ, छह महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बात उससे हजम नहीं हो रही थी। भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर कहने लगा, बहन जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमें महसूस होने लगा कि धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया। जैसे ही बाहर निकलते हुए देखा उसकी पत्नी ने, तो वो आकर के हमसे हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आप क्षमा कर देना। हमने कहा एक बात समझ में नहीं आई, क्या आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, भगवान पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे जान बच गई? तो कहने लगे ऐसी बात नहीं है। क्या बात है फिर? तब उसकी पत्नी ने सुनाया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो हमेशा समाज के लिए उसने भलाई का काम किया। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब गवर्नर का टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, तो उनको विदेश जाना था उस गैदरिंग में, जहां उनका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था क्योंकि उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया था समाज के लिए। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन में तो ठीक होकर के नहीं जा सकता है, तो बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहे थे। अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे, उन सबके बीच में मैं जाता था, मेरा सम्मान होता था, अवार्ड मिलता था, मेरे फोटो निकलते थे, वहां से जब मैं वापस आता था यहां मुझे कैसे रिसीव किया जाता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये घटना हजम नहीं हो रही थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार हमारे मन में भी ये प्रश्न आ जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हाँ, मैंने क्या ऐसा किया, भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? उसके मन से भी यही बात निकल रही थी। किसी ने हमारे सामने सामने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों गाली देता, कर्म का हिसाब किताब भी तो बीच में होता है कि नहीं होता है? उसको और गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकते थे? अरे भाई हिसाब किताब ही लेना था तो बाद में लेता था, पहले लेने की क्या आवश्यकता थी? कर्म मैंने किया, फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल, कितनी बड़ी गौरव की घड़ी थी मेरे लिए, तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खैर हम तो वहां से निकल गए। 8-10 दिन के बाद सतगुरुवार का दिन था, तो हमने सोचा चलो बाबा के घर का प्रसाद लेकर के जाते हैं, हो सकता है भाई की स्थिति ठीक हो। जब हम गए तो और कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसकी पत्नी दो ही बैठे थे। जैसे ही हमें देखा तो कहने लगे, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। बड़ा आश्चर्य लगा। फिर उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया कि देखो बहन जी, भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है, जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए, भगवान ने ये छोटा सा एक्सीडेंट करके मुझे रोक लिया। और रोका भी क्यों? क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था ना, इसीलिए। अब खुद ही उस दिन खुद ही प्रश्न पूछ रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान ने? और आज 10 दिन के बाद खुद ही उत्तर दे रहा है, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। खुद ही जवाब दे रहा है। और इसीलिए फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, कहने लगा, देखो बहन जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा चाहा नहीं, इसीलिए आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने मुझे नया जीवन दान दे दिया, कितना बड़ा फल दिया मुझे। आज ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने एक नया जीवन दान देकर के मुझे सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित कर दिया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता था। मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गए ना ये 10 दिन गए। जो भी आता था भगवान का नाम लेता था उसके ऊपर गुस्सा हो जाना। अब हरेक की सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि संबंध बिगड़ जाएंगे और उस संबंध को संभालने में एक एक के सामने मैंने हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगी है। वो बहन कहने लगी, मैंने जिंदगी में अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे मांगनी पड़ी। मेरे दिन सबसे बुरे गए 10 दिन, तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आ जाता है। मैंने कहा, बहन जी समय का शुक्र करो कि 10 दिन के अंदर समय ने पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ है। क्योंकि ये बात गीता के सार में लिखी हुई है, लोग घरों में लगा के रखते हैं लेकिन क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो ज्ञान खाली लटकाने के लिए घर में है या पूजा के मंदिर में रखा हुआ होगा लेकिन जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। ये तो समय का शुक्र करो कि समय ने 10 दिन में पर्दा खोल दिया। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद खोलता है। वो साल कैसा जाता है? साल के बाद हम यही कहते हैं अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता, कहते हैं ना। तो उसको पहले क्यों नहीं कह पाते हैं? तो शायद कई प्रकार का तनाव कम हो जाता, जीवन के अंदर दुख की वो घड़ियों को पार करना आसान हो जाता और खुशी हमारी बरकरार रहती थी। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन नहीं, इसलिए बार बार ये सवाल आता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं। फिर भगवान ने ऐसा, भगवान आज यही जवाब देता है, क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या होता था। ये तो बहुत कम हो गया है, ठीक है। इसलिए आज के बाद कभी ये नहीं कहना मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि शायद बहुत बड़ी घटना होने वाली थी और बहुत छोटे में काम पूरा हो गया। इसीलिए वो भाई ने भी कहा, घात तो आई, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन कितना छोटा हो गया, खाली 2 पैर फ्रैक्चर हुए, वो तो 6 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा, शायद और अच्छे काम करने के लिए भगवान ने मुझे एक नया जीवन दान दिया। ये ऐसी अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव बातें सोचो तो शायद जीवन का कई प्रकार की परिस्थितियों को हजम करना आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ महसूस करेंगे। तो इसीलिए स्वास्थ्य का अर्थात सुअस्थि, यानी जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज के बाद तो दुखी नहीं होंगे, हाँ ये सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब मिल गया। ये चक्र कैसे चलता है, स्वास्तिका के रूप में उसको दिखाया और 4 भाग इसके दिखाए कि अगर 5000 साल का ये चक्र है और चारों भाग एक समान है तो 1250 साल का एक युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। सतयुग में ये चक्र कब आरंभ हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, रात को 12 बजे हुआ, सुबह 4 बजे हुआ, 10 बजे हुआ मालूम नहीं है, लेकिन मनुष्य ने उस चक्र का पहला पहर सुबह को मान लिया। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है, सत्यता का युग जहां असत्यता का नामो निशान नहीं है। इस युग को स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर आशीर्वाद के पोजीशन से आरंभ होता है कि जिस युग के अंदर हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में है, इसीलिए सत्यता का समय है, असत्यता का नामो निशान नहीं है। जिस युग को दूसरे शब्द में सूर्य वंश भी कहते हैं, कि जैसे सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती है, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं, सोले कला संपूर्ण स्थिति में है। जिस युग के लिए बाइबल में बहुत सुंदर बात कही गई है, जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर बनाया था तो कैसा था, तो कहा गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। कि जिस तरह परमात्मा संपूर्ण है, ऐसे हर आत्मा भी अपने संपूर्ण स्वरूप में वहां विराजमान थे, उस युग में रहते थे, सोले कला संपूर्ण। कोई पूछते हैं सोले कला कौन सी, कोई गिनती की कला नहीं होती है, लेकिन 16 फिगर परफेक्शन का है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं, 16 आने सच है, 16 आने। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा देखते हैं तो क्या कहते हैं, सोले कला संपूर्ण। तो 16 फिगर परफेक्शन का है। इसीलिए बाइबल में कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया, क्योंकि सत्ययुग से पहले कलयुग था जहां मनुष्य थे, तो उन्हीं मनुष्य को अपनी कृति में बनाया, जिसको कहा भगवान भगवतियां। इसलिए गॉड इज वन, भगवान एक ही है, लेकिन उसकी प्रथम कृति इस काल चक्र के अंदर भगवान भगवतियां। इनको भगवान भगवतियां क्यों कहा, भगवान शब्द को अलग करे भगवान, के भाग्य विधाता से जिन्होंने श्रेष्ठ भाग्य आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया, ऐसी भगवान आत्माएं। इसी को ही हिंदू धर्म में कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग में नर और नारी है, उन्होंने ऐसी श्रेष्ठ करनी की जो सतयुग के अंदर वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने, नर से ही नारायण, नारी से ही श्री लक्ष्मी बने। जिसको गुरु नानक देव ने बड़े सुंदर शब्द में कहा कि मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार, परमात्मा को मनुष्य को देव बनाने में देर नहीं लगती है। यानी हर धर्म में ये बात आती है कि मनुष्य से देवता, शैतान से फरिश्ते, या नर से सो नारायण कहा गया है। इस युग के लिए समय कैसा था, तो कहा जाता है कि इस युग के अंदर समय इतना सुंदर था, जहां हर और प्रकृति के अंदर भी पवित्रता छाई हुई थी। पशु पक्षी एक घाट पर पानी पीते थे, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी शांति समृद्धि उस दुनिया के अंदर थी। उस दुनिया में पवित्र आत्मा इस संसार में नीचे उतरती है और कोई न कोई देव या देवी का रूप धारण कर लेती है, और इस तरह से पूरी सतयुगी दुनिया वहां चलती है। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला, तो श्री नारायण के साथ एक शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण सूर्य नारायण भी इसीलिए कहा गया है कि जो सतयुग के राज्य करता है, जो सूर्य वंशी है, इसीलिए उसको सत्य नारायण या सूर्य नारायण कहा गया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आता है, जिसको कहा जाता है त्रेता युग, जहां स्वास्तिका का हाथ नीचे गिरता है, है, राइट हैंड साइड पर है। जिस युग को कहा चंद्र वंश, जहां सीढ़ी मनुष्य वही देवी देवताएं नीचे उतरते हैं, दो कला कम होने लगती है। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि उस दुनिया में भी है, परंतु सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है। इसीलिए उस राज्य को कहा ही जाता है चंद्रवंश। वहां राज्यकर्ता कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य है। कैसे पता चला? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण रामचंद्र। इसीलिए दिखाते श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको कहा जाता है त्रेता युग। और राम राज्य जहां पर भी इतना सुख समृद्धि थी, इसीलिए तो महात्मा गांधी ने भी राम राज्य का स्वप्न देखा भारत के लिए, कि चलो सतयुग जितनी परफेक्शन ना आ सके, राम राज्य जैसा तो बनाए। लेकिन वो भी एक स्वप्न ही रह गया, अधूरा रह गया। कई बार कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ी। कर्म करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये संसार एक नियम में चलता है। और वो नियम क्या है कि हर चीज नई से पुरानी अपने आप होती है, पुराने से नया बनाना पड़ता है, लेकिन पुरानी अपने आप होती है। ये कुदरत का बना हुआ खेल है। विज्ञान में भी थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसकी व्याख्या है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, फिर अस्त व्यस्त अपने आप हो जाती है, फिर सुव्यवस्थित उसको करना पड़ता है। मकान नया बनाते हैं, खंडर अपने आप हो जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है, खंडर को तोड़ करके फिर नया बनाना होता है। कुदरत के नियम के हिसाब से कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, फिर नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। और कुदरत के नियम के हिसाब से कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहती है? कितना दिन रहती है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और अमावस्या में कितना दिन रहता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी पूर्णमासी की ओर यात्रा प्रारंभ। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है, कोई घड़ी परिवर्तन रुकता नहीं है, कंटिन्यू है। इसीलिए कहा एक घड़ी, हर घड़ी परिवर्तन है। तो पूर्णमासी होते ही वापस परिवर्तन अमावस्या की ओर प्रारंभ हो जाता है। ठीक इसी तरह यह संसार भी संपूर्ण स्वरूप में, सोलह कला संपूर्ण स्वरूप में कुछ समय रहता है, उसके बाद पुनः उसकी यात्रा अपूर्णता की ओर, कलयुग की ओर प्रारंभ हो जाती है। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। और इस तरह से संसार का तीसरा भाग आता है, जिसको कहा गया द्वापर, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाता है। सतयुग में इस पोजीशन में था आशीर्वाद, और द्वापर में इस पोजीशन में आ गया, अर्थात मांगना। द्वापर सत्यता मन एकता, एकता यहां समाप्त होती है, द्वापर आरंभ होता है, दोपुर आरंभ हुआ। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, और असत्य मिक्स होने के कारण ही दुख और अशांति जीवन में आई। और उस दुख और अशांति के लिए ही कहा गया, दुख में सिमरण सब करे सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो सत्युग और त्रेता युग में भगवान को किसी ने याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर सत्युग और त्रेता युग में भगवान को याद करते थे तो दुख किस लिए आता था। लेकिन ये भी कुदरत का खेल है, सुख और दुख, ये आना और जाना ये स्वाभाविक है। दुख होगा तो ही सुख की कदर होगी, अगर सदा ही सुख चलता रहे तो सुख की कदर नहीं होगी। इसीलिए ये खेल ही ऐसा बना है, दिन और रात, सुख और दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये खेल ही इस प्रकार का बना हुआ है, आधा आधा चलता है। तो सुख आधा समय और द्वापर के बाद फिर दुख आधा समय, इस दुख की दुनिया में सुख कहाँ है? कोई इंसान नहीं कह सकता कि हम बहुत सुखी है, क्योंकि सुख की परिभाषा क्या है? सुख यानी जीवन में चार प्रकार का सुख होना चाहिए, तब सुखी माना जाता है। कौन से चार प्रकार का सुख? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। कोई भी कलयुग में एक ही सुख मिलेगा, या तो तन स्वस्थ होगा तो मन टेंशन में होगा, धन की कमी होगी, और जन देखो तो परेशान करने वाले मिलेंगे। अगर धन होगा तो टेंशन होगा, गवर्नमेंट से कैसे बचाया जाए, इसलिए क्या धन है तो भी टेंशन, नहीं है तो भी टेंशन। अच्छा, जन ठीक नहीं होंगे, पीछे पड़ गए होंगे आपके धन के, स्वार्थ के कारण मतलब से आपके पास में आते होंगे, और धन है तो तन बीमार ही बीमार। आज कई धनवान को देखो, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं खा सकते हैं, पी सकते हैं, नौकर मौज कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी एक ही प्रकार का सुख है, तीन प्रकार के दुख है। चारों प्रकार के सुख सिर्फ सत्युग में, देवताओं को देखो, धन से कितना सजाते, पता चलता है कितने धनवान थे। मुख की मुद्रा देखो, प्रसन्नता, टेंशन ही नहीं है, स्वस्थ दिखाते हैं, शरीर एकदम तंदुरुस्त। कभी कोई कथा में सुना फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, या उसके ऊपर ही ऑपरेशन किया गया? नहीं, सदा स्वस्थ, कंचन काया, निरोगी काया। तो चारों प्रकार, और जन तो है ही वहां बहुत अच्छे, सोले कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न। तो चारों प्रकार का सुख सिर्फ सतयुग में था, कलयुग में सिर्फ एक प्रकार का सुख मिलेगा। कोई भी जो चॉइस कर लो आप, ये आपके ऊपर है। आपको जन का सुख चाहिए, तन का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, या धन का सुख चाहिए, ये आपकी चॉइस है। जब ऊपर से नीचे आते तो भगवान पूछता है, कौन सा सुख चाहते हो, चारों में से एक पकड़ लो। और इसीलिए जब एक पकड़ते, दूसरे जब दुख है तो क्या कहते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों दिया, भगवान ने तो चॉइस करने के लिए आपको कहा था, आपने वो चॉइस किया तो क्या करेंगे, दोषी कौन, हम स्वयं हैं। इसीलिए कहा यह दुख आरंभ होता है, द्वापर से आरंभ हो गया। और इसी तरह संसार के अंदर जो पूज्य स्थिति थी, पुजारी बन गए, भगवान से मांगना आरंभ कर दिया, हे प्रभु सुख दे दो, शांति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जो आत्माएं इतने पूज्य स्वरूप में थे, अपने ही मंदिर बना करके पूजा करना आरंभ कर दिया द्वापर में, पुनर्जन्म लेकर के। आज जैसे दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बनते हैं, अगर पूछा जाए कि तो संत है, उसके मंदिर क्यों बनाए गए, तो क्या कहते लोग, हमसे तो श्रेष्ठ थे। इसी तरह इसी युग में शास्त्रों का निर्माण हुआ, मंदिर बनाए गए, पूजा के विधि विधान बनाने लगे, क्योंकि मनुष्य आत्मा उस श्रेष्ठ पूज्य स्थिति से नीचे आ गया, देह अभिमान के वश हो गया, अहंकार के वशीभूत होने लगे, पांच विकारों के वशीभूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गए, और इसीलिए खुद ही अपने जो पूर्वज थे उनके ही मंदिर बना करके पूजा करना प्रारंभ करते हैं। इसी तरह समय और आगे बढ़ता गया, तब कई बार लोग सोचते हैं कि फिर ऐसी दुनिया के अंदर भगवान से मांगा तो भगवान ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? परमात्मा का अपना आने का वक्त नहीं था, इसीलिए उस समय संसार में कुछ महान आत्माओं को भेजा गाइडेंस देने के लिए मनुष्य को। सबसे पहले भारत से बाहर इब्राहिम आते हैं, जो इस्लाम धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, जिसने बौद्ध धर्म को स्थापन किया। उसके बाद क्राइस्ट आते हैं, जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। और भारत में तो हर स्टेट में कोई ना कोई महान आत्मा, दिव्य आत्मा आ गए, जिन्होंने अपने अपने धर्म की रचना की, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ नियम बनाए समाज के लिए। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। ये महान आत्माओं ने भी कुछ नियम दिए समाज के लिए, लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने उस बात को समझा नहीं, और ही धर्म के बंटवारे में आ गए। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म बुरा आचरण करना नहीं सिखाता है, बुरा व्यवहार करना नहीं सिखाता है, बुरे कर्म करना नहीं सिखाता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाती है, जो उनके भाव को समझ ही नहीं पाए, जो शिक्षाएं उन्होंने देना चाहा उसको समझ ही नहीं पाए। जहां इब्राहिम गए थे, वहां के समाज की व्यवस्था को देखते हुए उसने कुछ प्रचार किए, और उनके प्रचार थे कि जब उन्होंने देखा कि समाज के अंदर जीवन जीने के सिद्धांत नहीं है, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए, जो आज भी उनके धर्म पुस्तक में लिखे हैं। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। ठीक इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे, वहां की समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उस समाज में उन्होंने देखा मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है, और कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं। तब उन्होंने इसी बात की शिक्षा दी, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो और कर्म अच्छा करो, कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझा नहीं। फार ईस्ट की दुनिया में जहां महात्मा बुद्ध का प्रचार अधिक है, चाइना जापान इस तरफ ज्यादा महात्मा बुद्ध के मंदिर भी मिलेंगे और उनका प्रचार भी मिलेगा, लेकिन अफसोस उन लोगों ने नहीं समझा। कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग? नॉन वेज तो कहीं खाते हैं, लेकिन चाइनीज क्या खाते हैं? जो दुनिया में कोई नहीं खाते हैं वो ये लोग खाते हैं, है ना? आप सोचेंगे, बहन जी आपको कैसे पता? हमारा बीच में जाना हुआ था हांगकांग चाइना के तरफ, तो जब वहां गए तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, जहां भेलपुरी पानीपुरी चाट मसाला आदि सारे स्टॉल लगे रहते हैं, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है, वहां भी कई प्रकार के स्टॉल लगे रहते हैं। हमें एक बोट लेना था, एक आइलैंड पर प्रोग्राम था, तो गाड़ी पार्क करके उस चौपाटी से 10 मिनट गुजरना पड़ा, और बोट लेने के लिए जब गए, उस समय जो नजारा देखा मुझे कभी भूलता नहीं। एक स्टॉल पर देखा तो सांप लटक रहे थे रंग बिरंगी, है ना, और लोग बड़े चाव से खा रहे थे। कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी पकाई जा रही थी, कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी बनाई जा रही थी, कहां देखा तो कुत्ते का गोश्त उबल रहा था, कहां देखा तो माना ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं खाते हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस इन लोगों ने समझा नहीं। आज तो अगर आप ताइवान जाएंगे या इंटरनेट में भी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ताइवान के अंदर आज प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य के बच्चे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है और उस बच्चे को पकाया जाता है, जिंदा पकाया जाता है। और आज मनुष्य ऐसा हैवान बनता जा रहा है जो अपने ही बच्चों को खाने में हिचकिचाता नहीं है। ये हाल है। मानव अधिकार की बात करते हैं, इनके मानव अधिकार कहां गए? और इस तरह से जहां जीसस गए थे वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने भी दो बातों को देखा जिस बात को लेकर के प्रचार आरंभ किए। उन्होंने देखा उस समाज के अंदर कि मनुष्य इतना झूठ बोलने लगा है और मनुष्य को मनुष्य के प्रति इतनी नफरत है। तब उन्होंने प्रचार किया कि सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन अफसोस जो प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट थे उनके साथ क्या किया गया? उनको ही सूली पर चढ़ा दिया गया, यानी सारी दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे। इस तरह से ये समय का चक्र आगे बढ़ता गया और तभी कहा कि परमात्मा ने अपने पैगंबरों को तो भेजा था लेकिन मनुष्य ने पैगाम को समझा ही नहीं, तो भगवान का दोष तो नहीं है। और इसीलिए ये दुनिया और दुखमय होती गई और कलयुग आ गया। जहां स्वास्थ्य का हाथ ऊपर उठता है, यानी अति धर्म ग्लानी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति का समय आ गया। जिस युग को दूसरे शब्द में कहा जाता है रावण राज्य। रावण राज्य इसलिए कहा गया कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। यानी जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि दो बातों की कमजोरी थी उसके जीवन में। कौन सी दो बातें? अहंकार चरम सीमा पर था और अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन में आ गई थी। यही दो बातें उसका पतन का कारण, सर्वनाश का कारण बनी। ठीक इसी तरह आज की दुनिया को भी अगर देखा जाए तो ये रावण राज्य से कम नहीं। सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई प्राणी नहीं है संसार में। आज मनुष्य भी विज्ञान की शक्ति से आकाश मार्ग से जाने लगा, रावण की तरह समुद्र के मार्ग से आने लगा, रावण की तरह। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। मिसाइल पावर है उसके पास, और वो मिसाइलों के नाम क्या है? अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वही तो मिसाइलों के नाम है जो रावण के पास अस्त्र शस्त्र थे। तो मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली गली में 10 मंदिर मिलेंगे आपको, खूब भक्ति कर रहा है, हर मंदिर के सामने सर झुका रहा है, चलते चलते भी पता नहीं कितने तरीके से वो करता है, खूब भक्ति कर रहा है। लेकिन और रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। हवाई जहाज से अगर ऊपर से देखा जाए तो बड़े शहरों का नजारा कैसा लगता है, लंका जैसा चमक रहा है। पंप एंड शो की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है। तो आज मनुष्य के पास भी ये चारों चीज है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, है ना। लेकिन फिर भी आज की दुनिया सर्वनाश की ओर जा रही है। क्यों? मनुष्य जीवन में भी यही दो कमी आ गई, अहंकार चरम सीमा पर है और अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन के अंदर आ गई है। और इस तरह से आज दुनिया के अंदर देखो तो हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है। किसी के जीवन में बुराइयों का बंधन है, व्यसनों का बंधन है, बुरी आदतों का बंधन है, क्योंकि मनुष्य आत्मा इतना विकारों का गुलाम बन गया है। खाली कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट का गुलाम। और इन गुलामी के कारण उसकी शक्ल में जो विकृति है, वो विकृति तो देखो कैसी हो गई है। ऐसी जब स्थिति आ जाती है जब न खुद का परिचय है न खुदा का परिचय है, खुदा को कहां ढूंढ रहा है, मनुष्य कहां ढूंढ रहा है भगवान को। कभी देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है। किस किस की पूजा करने लग गया? जब इतना धर्म ग्लानी का समय आ जाता है तब भगवान ने जो वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भी यही समय पर आता हूं, अति धर्म भ्रष्ट धर्म ग्लानी के समय पर। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते, अरे नहीं नहीं कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो कितने साल बाकी है, कहते खाली 40,000 गए हैं और 4,32,000 साल बाकी है। अब सोचने की बात है, 4,32,000 साल अगर कलयुग को बाकी हो और बचपन की स्थिति में इतना धर्म भ्रष्ट हो गया है, 4,00,000 तो छोड़ो, 32,000 छोड़ो, खाली 32 साल ले लो, कैसी दुनिया हो जाएंगी। इसीलिए कवि प्रदीप जी के वो गीत याद आते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक और गीत याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा या कहा नहीं होगा। और वो सारी निशानियां जो बताई है गरुड़ पुराण में, वो सब निशानियां इस समय कलयुग के अंदर मौजूद है। तो अब कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, बस बच्चा नहीं है, थोड़ा ही बचा है। इसलिए कहा जाता, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। अब कलयुग कोई बच्चा नहीं, बूढ़ा हो चुका है। वही बातें पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, अभी कलयुग खत्म होने के कगार पर आकर के खड़ा है। विज्ञान इस बात का सबूत दे रही है, जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट आने लगी है, जिस तरह ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, कहते ओजोन लेयर में इतना बड़ा छेद हो गया है, पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, छन के नहीं आ रहे, इसीलिए कई प्रकार की बीमारियों के शिकार मनुष्य बनता जा रहा है। ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है। कुछ समय पहले मैं देहरादून गई थी और वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरा प्रोग्राम था। वहां बहुत बड़ा फॉरेस्ट का म्यूजियम है। जब मुझे म्यूजियम दिखा रहे थे तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको पूछा कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने फॉरेस्ट होने चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है उसको जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। मैंने पूछा कितने फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गया तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब 11 से 9 होने में कितना देर लगेगा। अभी भी रात्रि के समय जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींच लेते तो करीबन 2 या 3, 4 बजे के बीच में सिर्फ 2% ऑक्सीजन वातावरण में होता है। इसलिए लोगों को अस्थमा अटैक बढ़ गए हैं। हार्ट अटैक जो आता है साइलेंट अटैक, वो भी 2 से 4 के बीच में आता है, क्योंकि उस समय सबसे कम ऑक्सीजन वातावरण के अंदर होता है। अब आप सोचो 11 से 9% अगर हो गया तो ये 2% भी खत्म हो जाएगा रात्रि के समय में, मनुष्य जीवन कैसे चलेगा। और 4,32,000 साल पड़े हैं, कितना अंधविश्वास में मनुष्य है। और इसीलिए कहा कि अब ज्यादा समय, जिस तरह से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ रही है, ये प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति यही दर्शाती है कि बड़े से बड़े पैमाने में भूकंप आ रहे हैं, बड़े से बड़े पैमाने में सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, ज्वालामुखियां फट रही है, और ये सारे बम बनाए हैं रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना। सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर है। अब जो व्यक्ति वहां बैठता है कंप्यूटर के सामने, कहीं से आए कि नहीं आए, मिसाइल आए कि नहीं आए, देखते रहना सारा, यही उसका काम है। एक दिन अगर उसको मेंटल अटैक आया या घर में टेंशन हो गया, क्या करेगा, दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, कितनी देर लगेगी। इसीलिए कहा कि अब कोई ज्यादा समय ये संसार चलने वाली स्थिति में नहीं है। परिवर्तन ऐसी कगार की स्थिति पर आकर के खड़ा है। लेकिन यही समय पर भगवान ने जो वायदा दिया है कि मैं इसी समय इस संसार में अवतरित होता हूं, और वो भी भारत में, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके, अब यही कहते हैं भगवान कि अब चलो वापस घर जाने का समय हो गया है। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि होलसेल में मौत का प्रोग्राम चालू हो गया। एक भूकंप होता है लाखों मरते हैं, एक सुनामी आती है लाखों मर, अब लाखों में ही मरना है, 2, 4, 5 में नहीं मरना है। अभी समय आ गया है। लेकिन ये समय क्या कह रहा है, जब भगवान इस संसार में आते हैं तो वो भी सिर्फ 2 बातें कहते हैं। लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग भी वो 2 बातें नहीं समझ पाते हैं। कौन सी 2 बातें भगवान कहते हैं, भगवान भी यही 2 बातें कहते हैं, आत्म शुद्धिकरण करो, घर जाना है, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते, अरे बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, है ना, अरे दुनिया चलाने का ठेका हमने थोड़ी लिया है, वो तो ऊपर वाले का है, उसको मालूम है दुनिया कैसे चलानी। एक बार मेरा कार्यक्रम था एक शहर में, 7 दिन का प्रोग्राम था, बहुत सुंदर प्रवचन माला चल रही थी, काफी लोग आ रहे थे। अंतिम दिन एक बुजुर्ग भाई जब समाप्त होने पर हुआ तो बुजुर्ग भाई ने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने कहा आइए। स्टेज पर आकर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों को हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन पहली बार जीवन में वो क्या कहना चाहती है उसको हमने सुना, और इनकी एक एक बात में इतनी सत्यता समाई हुई है जो बात बोल रही है बहुत सत्य बोल रही है, लेकिन आज दिन तक हम इनसे दूर भागते रहे। हमने कहा क्या बात थी, फिर दूर भागते रहे। तो कहा ब्रह्मा कुमारियों के बारे में संसार में, समाज में ऐसी गलत फहमी फैली हुई है कि ये लोग भाई बहन बना देते हैं, इसीलिए हम लोग उस गली से भी नहीं गुजरते थे। हमने कहा ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाने की, हम नहीं बनाते हैं। मैंने उस बुजुर्ग भाई से कहा एक आप मंदिर तो जाते होंगे, बोले हाँ जाते हैं। मैंने कहा एक प्रार्थना तो आपने हर रोज गाई होंगी, बोले कौन सी। मैंने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, रोज गाया होगा भगवान को, बोले हाँ गाया। मैंने कहा आपने अकेले गाया या पत्नी ने साथ मिलके गाया, कहा दोनों ने साथ मिलके गाया। हाँ तो जब ये गा रहे थे तब कौन बन गए थे, ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? जब आप ये प्रार्थना गा रहे थे भगवान के सामने तब कौन बन गए थे? तो हमने थोड़ी बनाया, हम क्यों बनाएंगे किसी को? ये तो आप रोज गाते रहे बिना समझे गाते रहे कि क्या गा रहे हैं। अगर हम कभी पत्नी ने ये तो नहीं गाया कि मेरे पति के मात पिता तो मेरे सास ससुर, कभी कहा भगवान को ऐसा? हाँ गाते थे ना, ऐसा गाते थे। तो ये प्रार्थना तो ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं सिखाई, ये तो सदियों से चलती आ रही है। तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम कर रहे हैं? हमने उसको स्पष्ट करके कह दिया, उस प्रार्थना को ही स्पष्ट करके कहा। प्रार्थना अब हमेशा गाते रहे, और ये भी भगवान का संकेत है, इसीलिए समय का संकेत है। चलो भगवान की बात ना सुनो, समय का तो सुनो। समय क्या कह रहा है कि आज दुनिया में नंबर वन पर जो बीमारी चल रही है कौन सी चल रही है? एड्स। एड्स नंबर वन पर है, और एड्स बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं है। यानी समय भी संकेत दे रहा है कि आत्म संयम को धारण करो, नहीं तो अगर इस बीमारी के शिकार हुए तो बहुत जल्द आयु खत्म हो जाएगी। समय कह रहा है, फिर भी मनुष्य विपरीत दिशा में चल रहा है, उस समय के संकेत को समझने का प्रयत्न नहीं करता है। तो दूसरा संकेत समय दे रहा है। दूसरा संकेत क्या है समय का? क्या न्यूज़पेपर तो आप लोग हर रोज पढ़ते हैं, एक खबर रोज पढ़ते हैं, कौन सी? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, रोज पढ़ते हैं। और आपका विवेक क्या कहता, आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे, विवेक ये कहता है। शास्त्रों में भी दिखाया था कि रावण जैसा, रावण इतना शक्तिशाली, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा, और उसके बाद सीता जी को स्पर्श तक नहीं कर सका। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि इस घास के तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है। कौन सी शक्ति थी? ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, जिस कारण रावण भी उसको स्पर्श नहीं कर सका। आज भगवान भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को कहा जाता है जानी जाननहार, समय को बहुत अच्छे से जानता है कि आने वाला समय कौन सा है। और उस समय में अगर आत्मरक्षा चाहते हैं तो अपने अंदर भी ये पवित्रता की शक्ति को धारण करो। कई लोग हमसे पूछते ऐसे समय में भगवान क्यों नहीं बचाते हैं? भगवान बचाना चाहते इसीलिए तो कह रहे हैं। जैसे दुनिया में कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो बर्तन फट जाता है, इतना पावर होती है उस दूध के अंदर, कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। परमात्मा की पावर हाई पावर है, अगर पात्रता नहीं है तो क्या होगा? इसीलिए परमात्मा परम पवित्र, उसकी पावर भी इतनी पावरफुल है कि उस पावर को ग्रहण करने के लिए पवित्रता की पात्रता चाहिए, तभी उसकी मदद को ग्रहण कर सकेंगे, नहीं तो असंभव है। परमात्मा जानी जाननहार है, इसीलिए कह रहे हैं, मदद करना चाहते इसीलिए कह रहे कि पवित्र बनो, योगी बनो, तब उसकी मदद को स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो असंभव है। तब कई बार कई लोग सवाल पूछते, फिर दुनिया कैसे चलेगी? भगवान जानते थे कि कलयुगी मनुष्य हर बात में सवाल जरूर करेंगे। आज से 2000 साल पहले यीशु का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल के यीशु को जन्म दे सकती है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। 2000 पहले की बात है, 2000 साल पहले की बात है। आज भी मदर मेरी के रूप में उसको लोग पूछते हैं। इसीलिए कहा कि भारत के शास्त्रों के अंदर ये दर्शाया कि पांडव और कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मंत्रों के बल से उत्पत्ति हुई थी। इसी तरह अगर देखा जाए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री राम की उत्पत्ति कहां से हुई थी? यज्ञ के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कहां से हुई थी? योग बल से उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसको योगेश्वर कहा गया, योग बल से जिसकी उत्पत्ति हुई। तो भारत के अंदर समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य भी बदलता रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदाकाल ये संसार भोग बल से नहीं चला है। इसीलिए तो गीता में 5000 साल पहले भगवान ने कहा था, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, इसको जीतो अर्जुन, कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल लाओ, अधिकार प्राप्त करो। अगर यही उत्पत्ति का रहस्य है तो भगवान ये महावाक्य क्यों उच्चारण करते थे? लेकिन तब मनुष्य पूछते हैं कि फिर पवित्रता के बल से सृष्टि चलेगी, उसका प्रमाण? भगवान जानते थे कि ये मनुष्य जो है ना, हर बात में प्रमाण जरूर मांगेंगे, इसीलिए उसने कुदरत में आज भी एक पक्षी को रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। मोर का पक्षी आज भी अगर पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, कैसे? इसीलिए तो श्री कृष्ण ने मोर का पंख अपने ताज में सुशोभित किया। ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया था श्री कृष्ण ने, सम्मान दिया था कि कलयुग के अंदर भी एक एकमात्र पक्षी है जो पवित्रता के बल से उत्पत्ति करता है। तो जितना परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है, उतना ही पवित्र कलयुग में भी ये पक्षी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने उस पक्षी को सम्मान दिया, आदर दिया। कहने का भावार्थ कि पवित्रता की विधि से विज्ञान भी अभी कहने लगा है। अब तो विज्ञान के रिसर्च के हिसाब से भी ये पता चलता है कि नारी अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं, वो अपने ही संकल्पों से उत्पत्ति कर सकती है। ये विज्ञान का रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च है। आप अगर जाएंगे तो ये बताया गया है कि नारी के बोन मैरो में ही स्पर्म होते हैं, बीज होता है जिससे नारी स्वयं ही उत्पत्ति कर सकती है। यह विज्ञान का रिसर्च है, मेरा रिसर्च नहीं है। कहने का भावार्थ, पवित्र विधि से आने वाले समय में सतयुग, सुवर्ण काल जिसको कहा, वहां उत्पत्ति भी पवित्र विधि से। तो परमात्मा के पास पूरा प्लानिंग है, दुनिया को कैसे चलाना है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब अब किस्मत आपके हाथ में, किस्मत ना? क्योंकि यहां जब आए थे तो शायद परिवार वालों ने या समाज में किसी ने आपको कहा होगा, वहां जा रहे हो ठीक ठाक वापस आना, है ना? ब्रह्मा कुमारियों की बात तो जरूर सुनना, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आ जाना, कहा था हा? लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में, अब आपको दो राह पर लाकर के खड़ा किया है कि अब किस तरफ जाना है। किस्मत, किस्मत कैसे बनती है? किस्मत यहां जब आए, आपको कई बार ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भाइयों ने निमंत्रण दिया होगा, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार आपने क्या कहा था? बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो पहुंच जाएंगे। अब जो आए हैं किसकी मर्जी से आए हैं? अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से? किसकी मर्जी से? ऊपर वाले की। अब यहां से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे? अपनी मर्जी पे, अपनी मर्जी पर चलना है। अब आपके सामने दो रास्ता है, किसकी मत पर चलेंगे? भगवान की मत पर चलेंगे या दुनिया की मत पर चलेंगे? किसकी मत पर चलेंगे? हाँ, किस्मत आपके हाथ में है। भगवान ने आपको मौका दे दिया, ले आए, बता दिया, अब चलना न चलना आपके ऊपर है। फिर भगवान को दोष नहीं देना, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप सभी भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि भगवान जो नई दुनिया रचते हैं ना, वो इलेक्शन पर नहीं रचते, सिलेक्शन पर रचते हैं। उसने जरूर कोई ना कोई ऐसी खूबी अच्छाई आप में देखी, जिस कारण उसने सिलेक्शन में आपको यहां तक ले आया। यहां आना कई लोग चाहते हैं, लास्ट मोमेंट कोई काम आ जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो बनी बनाई टिकट कैंसिल करनी पड़ती है। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो लास्ट मोमेंट किसी और की टिकट पर आ गए, है ना? भगवान ने जिसको सिलेक्ट किया वो पहुंच जाते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा, वो कहानी याद आती है नारद जी की, कि नारद जी एक बार घूमते घूमते भगवान के पास पहुंचे तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, भगवान क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, ये मेरी खास डायरी है। कहा, खास डायरी में ऐसा क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए, भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करते हैं। भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ तेरा नाम सबसे पहला नंबर है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई तो कहा, मैं डायरी देख सकता हूं? कहा, देख लो। देखा खुद का नाम सबसे पहला नंबर, बड़ा खुश हुआ, मेरा नाम सबसे पहला नंबर। फिर देखने लगा भगवान ने किस किस का नाम लिखा है, ढूंढने लगा इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है। तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब डायरी भगवान को दी और नारद जी ढूंढने निकले हनुमान जी को, देखे तो हनुमान जी एक झाड़ के नीचे भगवान का नाम ले रहे थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने कहा, अब ये ढोंग बंद कर दो। कहा, क्यों भाई? तो कहा, भगवान की खास डायरी में देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो उनको बहुत याद करते हैं, और आपका तो नाम ही नहीं था और मेरा नाम सबसे पहला नंबर था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। हनुमान जी ने क्या, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। नारद जी क्या कहते हैं, वहां से चले। फिर थोड़े दिन के बाद भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा, ये डायरी तो अलग है। पूछे, भगवान ये कौन सी डायरी है? भगवान ने कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। नारद जी ने कहा, ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है भगवान? भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। नारद जी ने कहा आप भी याद करते? कहा हां। कहा मैं डायरी देख सकता हूं, आप किसको याद करते हैं? तो जब डायरी देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और नारद जी का नाम ही नहीं था। आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? हम भी देख के आए हैं। आप सबका नाम पर्सनल डायरी में है। दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान जिसको याद करे वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई आप हो, इसलिए आपका नाम पर्सनल डायरी में भगवान ने लिखा है। लेकिन अब इस डायरी में रहना है या निकल जाना है ये किसकी मर्जी होगी? किस्मत आपके हाथ में। ठीक है, ओम शांति।